एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर।
रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर,
तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर।
बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर तू पार कर मुश्किल का समंदर। नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी। एक है ओल्ड सेल्फ, पुराना मैं। एक है न्यू सेल्फ, नया मैं। और तीसरा है, अगर ये त्रिकोण है तो तीसरा कौन सा है? हायर सेल्फ। हायर सेल्फ, पुराने मैं से नया मैं। और जो नया मैं है, उस नए मैं को, जो मेरा वास्तविक मैं है, उस तक पहुंचाना है। पुराने मैं को खत्म करना है। पुराने मैं पर ही नया मैं निर्माण होगा, और फिर नए मैं से जो वास्तविक मैं है, उसकी यात्रा चालू होगी। ओल्ड सेल्फ, न्यू सेल्फ, हायर सेल्फ, ओरिजिनल सेल्फ, नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी, न्यू मैन, द सुपर मैन। जो ओल्ड मैन है वो एक पैथोलॉजी है, रुग्णता। जो ओल्ड मैन है वो सूडो मैन है, सूडो अर्थात झूठा। जो ओल्ड मैन है वो एक पिंजरा है, पर पंछी ने पिंजरे को ही अपना घर समझ लिया है और उसे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी आसक्ति उस पुराने के प्रति है, पुराना रूटीन, पुराना संस्कार, पुराना मैं, पुराना घर, सब कुछ जो ओल्ड सेल्फ से रिलेटेड है, पुराना भोजन, पुरानी दिनचर्या, पुरानी बातें, वो सब कुछ जो ओल्ड है। यात्रा ओल्ड से न्यू की तरफ है और फिर न्यू से हायर की तरफ। ओल्ड सेल्फ, न्यू सेल्फ, हायर सेल्फ। पर ये जो न्यू है उसको ओल्ड के प्रति घृणा नहीं है, नफरत नहीं है। ये कैटरपिलर है, ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई उड़ता है, कैटरपिलर नीचे रेंगता है। कैटरपिलर क्या खाता है इसके प्रति बटरफ्लाई को कोई घृणा नहीं है। कैटरपिलर भारी है, बटरफ्लाई हल्का है। बटरफ्लाई उड़ता है, कैटरपिलर रेंगता है। परंतु ये कैटरपिलर ही बटरफ्लाई बनता है। क्या करो, भू भू करते रहो। इसीलिए इस यात्रा में घृणा नहीं है, गिल्ट कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि इस कैटरपिलर का ही ये हायर सेल्फ है। ये कैटरपिलर ही धीरे धीरे बटरफ्लाई बना है, न्यू बना है। और उसे ये भी पता है कि कैटरपिलर जो कुछ करता है वो उस समय जरूरी है। इसीलिए ये जो यात्रा है पशु से मनुष्य बनने की, मनुष्य से फरिश्ता बनने की यात्रा नहीं है। सबसे पहली यात्रा है पशु से मनुष्य बनने की, जो पाशविक वृत्तियां है, पशुव्रत वृत्तियां है, वो पाशविक वृत्तियों से मुक्ति की। तो सबसे पहले पशु से मनुष्य, फिर मनुष्य से फरिश्ता, और फिर फरिश्ता से देवता। ये क्रम है। पहले ठीक ठाक मनुष्य तो बनना है, अभी पूरी तरह मनुष्य ही नहीं है। परंतु हाँ, इस मनुष्य को पशु के प्रति कोई घृणा नहीं है। इस फरिश्ते को मनुष्य के प्रति घृणा नहीं है, इस देवता को फरिश्ते के प्रति कोई घृणा नहीं है। ये इवोल्यूशन है कॉन्शियसनेस का, धीरे 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 धीरे। इसीलिए धीरे धीरे पशुता से मुक्त होना है, और इस नई पहचान के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज मुरली में कहा है ऊंचा पुरुषार्थ करो, कहीं और कहा है खूब पुरुषार्थ करो। क्या बनना है तुम्हें, कृष्ण की पत्नी बनना है या राधे का पति? कृष्ण पति रूप में चाहिए या बेटा रूप में? मुरली में प्रश्न है आज, राधे का पति बनना है या कृष्ण की पत्नी? क्या बनोगे? नई पहचान, न्यू मैन, सुपरमैन। क्योंकि ओल्ड मैन एक पैथोलॉजी है, क्योंकि ओल्ड मैन एक पिंजरा है, और पिंजरे को उसने घर समझा है और वहीं वो खुश है। इसलिए चेतना को धीरे 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 नए आयाम, नए पंख मिल जाए तो नई बातें पता चलेगी। एक जमींदार था और उसे बहुत सारे पेड़ लगाने थे। इस कार्य के लिए उसने 4 श्रमिकों को नियुक्त किया। सोचा कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो काम तेज़ी से होगा, जल्दी से होगा, और 4 को अलग अलग काम दिए। पहला जो श्रमिक था, पहला जो कार्यकर्ता था, उसको काम दिया तुम्हें गड्ढे खोदने, बस डिग होल्स, इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये काम हमें भी करना है। पहले को काम क्या दिया? गड्ढे खोदना है। दूसरे को काम दिया, तुम्हें बीज बोना है फिर गड्ढों में, सीडिंग। दूसरे को काम क्या दिया? तुम्हें बीज बोना है। तीसरे को काम दिया, जो गड्ढा है और बीज बो लिया गया, उसमें मिट्टी वापस डालनी है और साथ में थोड़ा फर्टिलाइजर खत भी डाल देना। यह काम तीसरे को दिया, गड्ढे को फिर से मिट्टी से भरने का। और चौथे को काम दिया वाटरिंग, सिंचाई का। रोज क्या करना है तुमको? पानी डालना। तो चारों को चार काम दिया, पहले को काम दिया गड्ढे खोदना, दूसरे को काम दिया बीज डालना, तीसरे को काम दिया गड्ढे को फिर मिट्टी से भर देना और साथ साथ थोड़ा सा खत भी डाल देना, और चौथे को काम दिया सिंचाई का, वाटरिंग का। काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया और जमींदार सोचने लगा अब जल्दी पेड़ उगेंगे। एक हफ्ता, दो हफ्ता, हफ्ते बीत गए, महीनों बीत गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। चारों को बुलाया, क्यों हुआ ऐसा? पहले से पूछा, बोलो तुमने अपना काम ठीक किया कि नहीं? उसने कहा मैंने तो बिल्कुल अच्छे से काम किया, मैंने तो बीज बोया, अब गड्ढा खोदा, सब गड्ढे मैंने ही खोदे, दक्षतापूर्वक अपना कार्य किया है। अगले ने कहा कि मैंने तो मिट्टी डाली, खत भी डाला। अगले ने कहा कि मैंने तो रोज पानी डाला। साहूकार ने, जमींदार ने कहा वो दूसरा कहाँ है बीज बोने वाला? तीनों ने एक साथ मिलकर उत्तर दिया, हमें क्या पता, हमें थोड़ी ना उनकी जिम्मेदारी, मेरी थोड़ी ना है, हमें काम दिया था, जो जो मुझे हमें काम दिया था हमने किया। अब वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ गया, उसने अपने काम किया कि नहीं, ये हमारा काम थोड़ी ना है देखना। चारों ही काम होने चाहिए, अगर एक भी एब्सेंट रहता है तो ये काम नहीं होगा। नया झाड़ उगाना है, नई आइडेंटिटी, नया व्यक्तित्व बनाना है, नए संस्कार बनाने हैं, तो ये चारों ही काम होने चाहिए। सबसे पहला काम है गड्ढा खोदना। गड्ढा खोदना कहाँ? अवचेतन मन की भूमि में गड्ढा खोदना है। और ये गड्ढा कब खोदा जाएगा? जब मन शांत होगा, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना है, अंतर मन में प्रवेश करना है। ये एकांत में और मौन में और योग की अवस्था में किया जा सकता है। तो अमृत वेले का समय जो है ये इस काम के लिए क्या करना है? गड्ढा खोदना है। उस समय जब मन शांत होता है, चेतन मन में बहुत ज्यादा संकल्प नहीं होते हैं, मन स्थिर होता है, उस समय डीप जाकर एक गड्ढा खोदना है। दूसरा काम है बीज बोना। बीज है संकल्प। जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं अपने स्वभाव में, संस्कार में, भोजन में, दिनचर्या में, कुछ भी, जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, वो एक संकल्प के रूप में होगा। तो उस संकल्प रूपी बीज को फिर बोना है। और तीसरा, फिर उसको ढकना है, उसकी सुरक्षा करनी है, उसको बार बार खोद के देखना नहीं है, क्योंकि तूफान बहुत है, आंधियां बहुत है, माया बहुत है। बाप का बनंती, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनंती, ज्ञान सुनंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती, और फिर क्या, भागंती, माया खावंती। ओहो मम माया, आज की मुरली। इसलिए क्या करना है? संकल्प किस अवस्था में बोया जाए? जब मन शांत हो, वो है गड्ढा खोदना। फिर संकल्प डाला, वो है सीडिंग, और फिर उस पर वापस मिट्टी डाल देना, थोड़ा सा खत डाल देना, और रोज क्या करना पड़ेगा? फिर वाटरिंग, पानी, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। संकल्प तो कर लिया, प्रतिज्ञा तो कर ली, पर एक बार प्रतिज्ञा कर ली अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, ये काफी नहीं है। एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे ऐसा बनना है, ये काफी नहीं है। रोज रोज क्या चाहिए? रिविजन। रिविजन अर्थात वाटरिंग पानी, इसमें से एक भी अगर मिसिंग हो तो काम नहीं होगा। खेत जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, बाड़ कर लगाते हैं ना उसको, क्यों? जंगली जानवर पशु ये सब उसको नष्ट कर सकते हैं। जब झाड़ छोटा है तो उसकी रक्षा करनी होती है, पौधा है अभी, पर यही पौधा यदि वटवृक्ष बन जाए फिर तो हाथी भी बांध दो इसको, फिर कुछ नहीं होगा। लोअर कॉन्शियसनेस में हमें सुरक्षा करनी पड़ती है, हायर कॉन्शियसनेस में कोई प्रभाव नहीं है। फूड भी अपना प्रभाव डालना बंद कर देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर ऐसे व्यक्ति पर, फिर वो कुछ भी ले ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, हायर में कोई प्रभाव नहीं है। फिर वो जो हम कहते हैं यहाँ लेस प्राणा मोर प्राणा, चाहे दिल्ली में रहो या माउंट आबू में रहो, उसके लिए सेम है। फिर ये नहीं कह सकते कि अरे यहाँ तो एकदम बंद बंद कमरा है, यहाँ वो अच्छा नहीं है, वहाँ वो अच्छा, बिकॉज द सोर्स ऑफ प्राणा इज यू, तुम ही प्राण के स्रोत हो। ये खाऊंगा, अरे ये तो बासी चीज है, ये फ्रेश है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सारे अंतर खत्म हो जाते हैं एक लेवल पर। इसके लिए बुद्ध के जीवन में, क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है कैसे ये लोग अपने नियमों को तोड़ देते थे किसी एक आत्मा को सुख देने के लिए। बुद्ध को क्या पता नहीं था कि अंतिम जो भोजन उसने खाना है उसमें जहर है? बुद्ध की मृत्यु कैसी हुई? मशरूम कुकुरमुत्ता वो लेके आया एक किसान जो कि जहरीला था, और बुद्ध को उसने कहा ये मुझे आपको खिलाना है, कितने प्यार से मैं लाया हूँ। क्या बुद्ध को पता नहीं था ये खाने से उसके बाद मेरी मृत्यु हुई, विषाक्त है? उन्हें पता था, परंतु सामने वाले व्यक्ति का प्रेम, और शरीर छोड़ना और शरीर में रहना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो हायर लेवल में ये सब चीजें बहुत कोई मायने नहीं रखती। तो नया संकल्प कब किया जाए? जब मन शांत हो, जब चेतन मन में जो उधेड़बुन हो रही है संकल्पों की, अगर हम तब सोचे कि मुझे ये परिवर्तन करना है तो वो स्थायी दीर्घकालीन सस्टेनेबल नहीं होता है। इसलिए जो कुछ चेंजेस करने हैं कब करने हैं? अमृत वेले के समय। बीज गड्ढा खोदो, दूसरा बीज डालो, तीसरा फिर मिट्टी डाल के रखो उसके ऊपर। लोग अभी अभी संकल्प किया और तुरंत सबको सुनाना चालू करते हैं, आज से हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे। उससे क्या होता है? ईगो भी आता है और ज्यादा समय चलता नहीं है। ये बड़ी गुप्त यात्रा है, इनकॉग्निटो यात्रा है, क्योंकि जो होने वाला है हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कैसे शरीर रिस्पॉन्ड करने वाला है। ये तो बड़ा धीमे धीमे धीरे धीरे गुप्त रीति से जाना है, समझते हुए, समझ के साथ, बुद्धि के साथ, बुद्धि की सीढ़ी समझना है ये सारी चीजों को, क्या है ये सब। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम, नई पहचान बनानी है न्यू सेल्फ ओल्ड सेल्फ से, ताकि हायर सेल्फ की तो और अग्रसर हो। ये ऐसी यात्रा है, और इस यात्रा में शरीर के भिन्न भिन्न रूप हमारे सामने आएंगे, शरीर के भिन्न भिन्न रूप, नई नई चीजें पता चलेगी, शरीर की इच्छाएं पता चलेगी, शरीर की इच्छाएं, शरीर के भोग, शरीर की वासनाएं, शरीर की आसक्तियां, शरीर के लगाव, शरीर की बीमारियां, शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का हल्कापन, शरीर की भारीपन, शरीर के लगाव, शरीर को कहाँ कहाँ मोह है, शरीर की गंदगी, शरीर की गंदगी का पता चलेगा। ये है शरीर, शरीर में छिद्र ही छिद्र है, इन सारे छिद्रों में से जो कुछ निकलता है क्या है? दुर्गंध। शरीर में जितने छिद्र है उस सब में क्या निकलता है? केवल और केवल दुर्गंध ही निकलती है, कुछ भी नहीं, ये शरीर ही गंदगी है। एक व्यक्ति गुजर रहा था और वहां पर ह्यूमन स्टूल मल पड़ा हुआ था। वो एकदम मुंह बनाता है, नाक बंद करता है और घृणा भाव से भर जाता है, दुर्गंध आती है उसको, रास्ते पर पड़ा हुआ है। ये देखकर वो मनुष्य मल उससे बात करने लगता है, कहते क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। वो मनुष्य कहता है ऐसा नहीं करूं तो क्या करूं, कितनी दुर्गंध है तुम में। वो मनुष्य मल बोलने लगता है मेरी इस दुर्गति का कारण तुम हो। क्योंकि मल बनने से पहले मैं बहुत स्वादिष्ट फल था, जब तुमने मुझे अपने पेट में डाला उसके बाद ही मेरी ये दुर्गति हुई। वास्तव में तो तुमको देखकर मुझे घृणा आनी चाहिए, नाक मुझे बंद करना चाहिए। स्टूल प्रोड्यूसिंग मशीन, वास्तव में घृणा मुझे करनी चाहिए तुमसे, मुझे नाक बंद करना चाहिए और उधर देखना चाहिए। कैसी आसक्ति है इस शरीर में, सबसे ज्यादा आसक्ति इस शरीर में है हमको। इस शरीर के साथ जरा सा कुछ भी गलत हुआ, दर्द हुआ, कितनी चिंता हो जाती है। हर तरीके से इस शरीर को हम ठीक ठाक रखना चाहते हैं। जीवेशना जीवेशना छूटती नहीं है। कितना भी शरीर के प्रति घृणा हो, कुछ भी हो, दुख दे, परंतु शरीर कोई फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। एक लकड़हारा गुजर रहा है, कहता है क्या करूं, ये जीवन व्यर्थ है, इतना मेहनत करो, दिन भर लकड़ियां काटो और थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसमें फिर पत्नी चिल्लाती रहती है, बच्चे भूखे रहते हैं, क्या करूं, हे प्रभु इससे तो अच्छा होगा ये शरीर ही छूट जाए, उठा ले मुझे हे प्रभु, कहां है मौत, मुझे उठा ले। और कोइंसिडेंस, मौत वहीं से गुजर रही होती है। उस लकड़हारे से कहती है तुमने मुझे याद किया, वो कहते तुम कौन हो, वो कहते मैं मौत हूं, बोले तुमने मुझे याद किया, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। वो कहती है नहीं नहीं याद तो मैंने इसलिए किया, ये लकड़ी जो नीचे रखी है ना सिर पे रख दो बस, इसलिए याद किया था, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। जीवन से कंप्लेंट तो बहुत है, शरीर से कंप्लेंट तो बहुत है, शरीर दुख भी बहुत दे रहा है, परंतु द डिजायर जीवेशना, जीवेशना अर्थात जीने की इच्छा, मरना तुल्य जीवन है परंतु मरना नहीं चाहते। इतनी आसक्ति, इतनी इतना गहरा तदात्म आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ है। तो इस प्राणी की यात्रा में हम अपने ही नए नए रूप देखेंगे, जानेंगे, शरीर की उत्तेजनाएं, शरीर के विकार, शरीर में विष, शरीर के संबंध, शरीर के धर्म, शरीर की प्यास, शरीर की भूख, कितनी बातें हैं शरीर से संबंधित, शरीर का दर्द, शरीर की बीमारी। हम शरीर में घिरे हुए और हिरे हुए लोग हैं वो, जो केवल तोते मिसल आत्मा की बातें करते हैं। शरीर ही शरीर है, शरीर का ही साम्राज्य है, शरीर का ही जगत है, केवल शरीर ही शरीर भीतर है, केवल मुख में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और इस शरीर और आत्मा को की पृथकता को यदि जानना है तो बिना इस प्राणिक यात्रा के यह संभव नहीं है। डिटैचमेंट, पृथकता, सेपरेटनेस, वो अलग, मैं अलग, ये अनुभूति तभी होगी जब स्थूलता, जड़ता, रिजिडिटी, सॉलिडिटी से मुक्त होंगे। तो भट्टी का तीसरा चरण आज का 80 डे 80 में पहुंच गए हैं और प्रश्न उत्तर का आज का 13वां दिन, द 13th डे, और प्रश्न आते रहेंगे और बहुत सारे आते रहेंगे। और प्रश्न जो है करना, ये मन का स्वभाव है, ये भी इंटरफियरेंस है वास्तव में, ये खुजलाहट है उसकी, उसे उत्तर से कोई मतलब नहीं है, उसके खालीपन का प्रदर्शन है। वो खाली है, खाली मन क्या करता है, प्रश्न पूछते रहता है, प्रश्न पूछते रहता है, प्रश्न पूछते रहता है। उसमें तृप्ति होती है उसको। परंतु व्यर्थ से तो अच्छा है, प्रश्न पूछना इसमें फायदा है, बुद्धि थोड़ी चलती है, इसमें चिंतन चलता है, मनन होता है, नया ज्ञान मिलता है, ज्ञान का संवर्धन होता है, नई बातें पता चलती है, पुराने जो बिलीफ सिस्टम, ये वास्तव में संपूर्ण प्राणी की यात्रा बिलीफ सिस्टम पर कुठाराघात है। हमारे अंदर मान्यताएं हैं, ढेर सारी मान्यता है, ये खाऊंगा तो वो होगा, वो खाऊंगा तो होगा, ये खाने से वजन बढ़ता है, ये खाने से वजन घटता है, ये खाने से ताकत आती है, खाने से ताकत कम होती है, ये खाऊंगा तो कोलेस्ट्रॉल कम, ये खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा, कितने सारे हमारे भीतर मान्यता है, ये करो तो वैसा होगा, वो करो तो वैसा होगा। अब जिसकी जैसी मान्यता, हम कहते हैं कि ये मैं लेता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है, दूसरा व्यक्ति वही ले रहा है बचपन से, उसे तो ठीक लगता है, एक का खराब होता है, एक का गला नहीं खराब होता है। एक ही चीज दो व्यक्ति खाते हैं, एक में पावर आती है, एक में पावर कम हो जाती है, एक का वजन घटता है, एक का कम हो जाता है, ये सारा खेल इधर है मन का। स्टार्ट।
ओम शांति। तो प्रश्नों की कड़ी में आज का प्रश्न है, 17 साल से ज्ञान में है लेकिन लास्ट 2 साल आई फील डेड फ्रॉम इनसाइड, नो खुशी नो मंगसा,
नो खुशी
नो मंगसा, लॉस्ट ऑल होप, सब आशाएं मर चुकी, थॉट आई लिसन योर क्लासेस बट नॉट गेटिंग द पावर टू धारणा इट फुली, आई फील ऑल ज्ञान योग हैव फेल्ड इन अर्जेंट नीड ऑफ योर ऑल सकाश सॉल्यूशन।
अध्यात्म में चलते चलते हर एक के जीवन में ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण निराशा घेर लेगी और सारा ज्ञान और सारा योग और सारी धारणाएं और अभी तक की हुई सारी सेवाएं, यहाँ के नियम, यहाँ की मर्यादाएं, यहाँ का सिस्टम, सब व्यर्थ दिखाई देने लगेगा। और ये अवस्था आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। सुबह का वरदान, अटेंशन और चेकिंग, धीरे 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 धीरे। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशियों के प्रश्न उत्तर है, उसमें एक मुरली है जिसमें प्रश्न पूछा गया, बाबा जब ज्ञान में आए थे तो बहुत उमंग उत्साह था पुरुषार्थ का, अब कहाँ चला गया। बाबा ने कई सारे उत्तर दिए थे और उसमें एक उत्तर था, दूसरों को देखना। यहां आने के बाद क्या कर दिया, दूसरों को देखना चालू किया। सीनियर भी ऐसा करते हैं, जूनियर भी ऐसा करते हैं, यहाँ ऐसा ऐसा होता है, यही नहीं सुधरे तो हम कहाँ से सुधरेंगे। तो एक परचिंतन चालू हो जाता है, यही ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। घर पे थे तो मौन में भोजन करते थे, यहाँ आकर देखा कि सब लोग खाना बातें करते हैं, दुख हुआ, फिर धारणाएं टूटी। एक कारण तो ये है, दूसरा कारण चिंतन खो गया है और जीवन एक रूटीन बन गया है। सुबह उठो, अमृत वेला करो, रूम पर जाओ, एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत, मुरली में जाओ, बैठो, डायरी खोलो, पॉइंट्स लिखो, डायरी बंद, नाश्ता करो, सेवा में जाओ, वही सेवा उसी ढंग से, दोपहर का भोजन, रेस्ट, नुमा शाम योग, थोड़ा बहुत ज्ञान चिंतन, थोड़ा इधर उधर टहलना, इधर उधर लोगों से बातें, एक बंद पिंजरा, जैसा कोलू का बैल होता है, घूमते जाता है, गुल 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 घूमते रह रहा है, घूमते रह रहा है, घूमते रहता है, और लंबा समय यही क्रम चलते रहता है तो स्पिरिचुअल डिप्रेशन में आत्मा प्रवेश करती है, और जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये व्यक्ति सब प्रश्नों के उत्तर जानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ज्ञान। क्योंकि अगर इसी समस्या को लेकर इसी व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति आ जाए तो यही आत्मा कम से कम एक घंटा काउंसिलिंग उसकी कर सकती है, अच्छे से भाषण दे सकती है, उसको समझा सकती है कि ये जो तुमको हो रहा है ना, इससे कैसे बाहर निकले, पर वो खुद उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो दूसरा कारण, चिंतन खो गया है, नवीनता खो गई है, इसलिए ये अवस्था आ गई। और तीसरा, भोजन में परिवर्तन नहीं लाया है, सॉलिडिटी में अभी तक फंसे हुए हैं। धीरे धीरे सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ आना है। सॉलिड फूड भारी बनाता है, सॉलिड फूड कंफ्यूजन लाता है, सॉलिड फूड हायर कॉन्शियसनेस से डिटैच कर देता है, सॉलिड फूड एनेस्थीशिया है, नींद में सुला देता है, मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इसलिए धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड की तरफ आना है। एक बार लिक्विड फ्लो शरीर में एस्टैब्लिश हो गया तो धीरे धीरे इमोशंस चेंज होंगे, माइंड चेंज होगा, विचार चेंज होंगे, संस्कार चेंज होंगे, सब कुछ बदलने लगेगा। और ये एक पावरफुल टूल है जो हमारे हाथ में है। इसलिए इस भट्टी के इस तीसरे चरण में हमने वो सारी चीज़ें हटा दी है, सारे पहले जो कुछ नियम थे, टाइम का कोई नियम नहीं रखा, क्वांटिटी का कोई नियम नहीं रखा, वेजिटेरियन वीगन का कोई नियम नहीं रखा, कुक्ड और रॉ का कोई नियम नहीं रखा, सारे नियमों को हटाकर धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंचे हैं। और वो पहुंचा है सबसे पावरफुल टूल, लिक्विड लाइफस्टाइल। क्योंकि सॉलिड खाने के बाद सॉलिड शरीर में कई दिन रहता है, लिक्विड 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता है, भले वही चीज़ हो, फिर भी सॉलिड खाते ही पेट में भारीपन होता है, लिक्विड खाने के बाद भी हो सकता है अगर ज़्यादा लिया, पर फिर भी वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। और हमारे न्यूरॉन्स 3 जगह पर है, पेट में, हार्ट में और ब्रेन में। स्टूल की जो गति होती है इंटेस्टाइन में, उससे हेडेक उत्पन्न होता है, भारीपन क्रिएट होता है इधर, क्योंकि ये और ये कनेक्टेड है। गट इज सेकंड ब्रेन, या कहो फर्स्ट ब्रेन। तो एक तो तीसरा भोजन, चौथा किस परिस्थितियों में रहते हैं और उससे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जीवन में जो कुछ हो रहा है, कल हमने देखा था कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ओवर जनरलाइजेशन, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं हूँ ही ऐसी, मैं जहाँ भी जाऊँगी ना, पहले ही कहा था मुझे मत लेके जाओ सेवा में, क्योंकि जब भी मैं सेवा में जाती हूँ गड़बड़ होती है, इतनी निगेटिविटी भरी है खुद के प्रति। आत्माएं इन 3-4 चीज़ों से दुखी है। सबसे पहला है सेल्फ विक्टिमाइजेशन, हर चीज़ का दोष स्वयं को देना, मेरी वजह से हुआ है, मैं ठीक नहीं हूँ, और बचपन से ऐसा होते आ रहा है। एक तरफ सेल्फ विक्टिमाइजेशन, वही आत्मा थोड़े देर के बाद ब्लेम गेम में आ जाती है, दूसरों को दोषी ठहराती है, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन का दुख का कारण तुम हो। वही आत्मा थोड़ी देर के बाद आती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ काम की नहीं हूं, बहुत न्यूनता अनुभव होती है, ये लोग कितना अच्छा सब कर रहे हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, भाषण करते हैं, सब करते हैं, सेवा करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। फिर वही आत्मा तुरंत पहुंचती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, मैं बहुत ऊंची हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया, किससे पूछ के तुमने ये किया, ये कैसा चक्र है, देखा है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन अर्थात खुद को दोषी ठहराना, ये एक है दूसरों को बाण मारना, एक है उसी बाण को उल्टा करके खुद को घायल करना, खुद के प्रति निगेटिविटी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, और फिर ब्लेम गेम, और फिर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और फिर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और बीच में एक चीज़ है गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भावना, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे पाप हुआ है, जो कुछ कर रहे हैं उसमें पाप ही ढूंढते हैं, जो कुछ हुआ है गलती हुई, कल का दिन पूरा वेस्ट हो गया, कल के दिन वो नहीं करना चाहिए था, आत्मग्लानी से भर गए, गिल्ट कॉन्शियसनेस। ये साइकिल इतना खतरनाक है कि कई सारी ब्राह्मण आत्माएं इसी में फंसी है। वो ब्राह्मण आत्माएं जो लंबे समय से ज्ञान में चल रही है उनकी बातें चल रही हैं, जो अभी अभी आए हैं 10-20-15 साल से उनकी नहीं, लंबे समय से जो चल रहे वो कहीं ना कहीं इन सब कॉम्प्लेक्सेस में फंस गए। तो ये सब जब होता है तो धीरे धीरे ऐसे विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे यहां तक भी विचार आते हैं कि ये जीवन व्यर्थ है, क्या करना है, कुछ कर तो नहीं रहे, ना हमारा किसी से किसको फायदा है, ना हमको किसी से फायदा हो रहा है। आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, राजऋषि कौन है, ब्राह्मण आत्माओं की जो दुआएं ले। तो अभी उत्तर क्या है, अभी इसमें करें क्या, फर्स्ट स्थूल सेवा चालू करो, क्या करो, ज्ञान को बढ़ाना, योग को बढ़ाना ये मुश्किल काम है, स्थूल सेवा करो, आत्माओं की जितनी हो सके ज्ञान योग बाजू रख दो, अभी क्या करो, स्थूल सेवा चालू कर दो, जितनी सेवा करनी है स्थूल, सबकी स्थूल सेवा करो, कोई बीमार है उसकी सेवा करो, किसी के लिए भोजन बनाओ, कुछ भी करो, परंतु स्थूल सेवा करो, जिससे क्या हो, आत्माओं की दुआएं मिले, केवल ब्राह्मणों की नहीं, बाकी लोगों की भी। हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पेशेंट्स होते हैं, क्या कुछ होता है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, कोई रहता नहीं है, उनकी सेवा करो, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, सब जगह, अलग अलग जगह पर जाओ और स्थूल सेवा चालू करो। दूसरा एक काम है स्पोर्ट्स, थोड़ा स्पोर्ट्स में रुचि लो, पिकनिक जाओ, जिम करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, शरीर पर काम, मन के तल पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करना है, किस पर काम करना है, शरीर पर काम करना चालू करो, लॉन्ग वॉक में निकल जाओ, एक्सकर्शन पर निकल जाओ, जंगल में चले जाओ, पिकनिक करो, खेलकूद करो, कुछ भी करो, नया कुछ करो। अगला है क्रिएटिव हैबिट्स, नई नई आदतें, टाइपिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, या कोई ऑनलाइन कोर्स करो, कई सारी चीज़ें हैं नई नई संसार में, लिखो रोज, कार्टून करो, पेंटिंग निकालो, स्केचिंग, एक ड्राइंग बुक खरीद लो और उसमें फरिश्ता निकालो, कुछ भी छोटे छोटे कार्टून निकालो डेली, ये काम करो। या फिर जब ऐसी निराशा वाली अवस्था आ जाती है तो टीवी पर बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स आते हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को होता है, ऐतिहासिक सीरियल्स, वो देखो, उसके पॉइंट्स निकालो, उसके शब्द निकालो, सीखने के दृष्टि से, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से नहीं, निकाली कुछ तो नया वो कर सकते। उसके बाद में भोजन पर काम करो, थोड़ा उसको परिवर्तन करने की कोशिश करो, जहाँ जहाँ लिक्विड दिख रहा है पूरा किचन बदल दो, लिक्विडेरियन किचन, पाउडर ही पाउडर हो, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बस बॉइलिंग पानी चाहिए, उसमें पाउडर डालो, बस ये एक ही काम है, लिक्विड 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 लाइफस्टाइल, सॉलिड लेते ही अंदर का राक्षस, रावण, कंस, गुरिल्ला, वो गोरिल्ला जागता है, इसीलिए धीरे धीरे लिक्विडिटी की तरफ आना है, और बीच बीच में जानबूझ के सॉलिड की तरफ जाना है, किस लिए, दुख क्या है ये जानने के लिए, ये दुख है, उसको खाओ और देखो उसका प्रभाव, और वो खाने के बाद में एनिमा, वॉमिटिंग, ये सब नहीं करना, खाना और ये सब नहीं करना, उसको बाहर नहीं निकालना, उसको शरीर में रहने दो, आज सॉलिड खाया तो दो एक दिन के बाद उसका प्रभाव पता चलता है, इसके लिए रहने दो उसको, लोग खाते और निकाल देते, पता ही नहीं चलता है उससे नुकसान क्या हुआ, उसको रहने दो, डोंट एस्केप सफरिंग, ये नई युक्ति है, दुख से छूटना नहीं, तुरंत दुख को अनुभव करो, ये दुख है, दुख को जानो, दुख को समझो, दुख से फिर उसमें समय जाना चाहिए, थोड़ा डायरिया होता है होने दो, जानो उसको, तो ये सारी युक्तियां करो। ये तो कुछ बातें बताई, बहुत सी हो सकती है, योग में टचिंग होगी।
लौकिक वालों की हेल्प करो,
लौकिक वालों की हेल्प करो, बहुत सारी चीजें कर सकती है। न्यू थिंग्स क्या क्या किया जा सकता है, हाउ टू हेल्प अदर्स, 100 बातें लिखो इसकी, दूसरों की मदद कैसे करें। मदद तो सबको ही चाहिए यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक तो प्राणिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, पुरुषार्थ में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, क्लास में बताई जाने वाली विधियों को भी डे टू डे लाइफ में यथासंभव अपना रहे हैं। अब जिज्ञासा है कि अगली 21 दिनों की प्राणिक भट्टी, उसके प्रति थोड़ा सा इशारा दे दीजिए, लौकिक में रहकर कर पाएंगे या नहीं।
ये राजयोग है, अज्ञात राजयोग सबके लिए। राजयोग वहां से चालू करना होता है जहां तुम हो। अगर कोई नॉनवेज में है तो वहां से चालू करो, दारू वगैरह पी रहा है वहां से चालू करो, बीड़ी सिगरेट पी रहा है वहीं से चालू करो, चेंज कुछ भी नहीं करना है। वेजिटेरियन है तो वहां से चालू करो, वीगन है तो वहां से चालू करो, कुक्ड ले रहा है वहां से चालू करो, रॉ ले रहा है वहां से चालू करो, फ्रूट ले रहा है वहां से चालू करो, जूस ले रहा है वहां से चालू करो, जो जहां है वहीं से चालू करेगा। और ये सहज होगी, आसान होगी, क्योंकि संडे की मुरली, सहज जो होगा उसी में निरंतरता है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल होनी चाहिए वो जर्नी। अगर कोई कार सीखना चला रहा है, ठीक है, और पहले ही दिन उसका इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हो गया, इधर ठोकी गाड़ी उधर ठोकी गाड़ी, वो खुद घायल हो गया, अगले दिन जाएगा क्या वो? कभी नहीं। अगर रनिंग करनी है और उसको कहो आज तुम्हारा पहला दिन है ना, आज 21 किलोमीटर तुमको दौड़ना है, चाहे पैर ही टूट जाए, जबरदस्ती उसको 21 किलोमीटर मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ाओ, आइंदा कभी नाम नहीं लेगा मैराथन का, खत्म यात्रा एक ही दिन में खत्म। इनिशिएशन जो होता है वो कैसा होना चाहिए? स्मूथ, जेंटल, बहुत सस्टेनेबल, लंबा समय जो टिक सके। शुरुआत ही कह दो कि 3 दिन तक ना खाना ना पीना, चक्कर आने लगे, धड़ाम से 1-2 बार गिरे, हेड इंजरी हो गई, एक निगेटिव इमेज, एक मेमोरी क्रिएट हो गई, अब आगे आदमी नहीं जाता है। इसलिए हमने डिटॉक्स को डाइल्यूट कर दिया है। डिटॉक्स क्या करता है? तुरंत टू क्विक टू हाई लेके चला जाता है, एकदम निर्जला, एकदम ऊपर चली जाती है आत्मा, परंतु वापस फिर नीचे आना पड़ता है, क्योंकि सस्टेनेबल कब तक करोगे? रॉ फूड बहुत अच्छी चीज है पर सस्टेनेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वेट लॉस और दुनिया दुश्मन और कुक की चाह, पेट में खालीपन, चक्कर, भारी, ये सब होता है डिटॉक्स सिम्टम्स। इसलिए बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग, मध्यम निकाय। बुद्ध ने कहा दिस इज मिडल पाथ, मेरा जो मार्ग है बीच का मार्ग है। मछलिम निकाय पाली शब्द है। बाबा ने क्या कहा? ना तो भोगी ना रोगी, ना ही तुमको सन्यासी नहीं बनना है, घर बार छोड़कर नहीं जाना है, ना ही तुमको भोगी गृहस्थ बनना है, बीच का मार्ग। इस गृहस्थ में रहते ही कमल समान, प्रेम का मार्ग, ज्ञान युक्त प्रेम, प्रेममयी ज्ञान मार्ग है, तो ये भी बीच का मार्ग है। लिक्विडिटी का, लिक्विड विथ कैलोरीज, जीरो लिक्विड्स नहीं, जीरो कैलोरीज नहीं, लिक्विड विथ कैलोरीज, जिससे वेट गिरेगा नहीं। तो अच्छा, तो रही बात उस भट्टी की, तो अभी टाइम है ना,
अभी बताएंगे, टाइम है, 8 दिन बाकी है।
अभी तो कितने दिन बाकी? 8 तारीख से, 8 फरवरी से 28 फरवरी। तो इसमें जो भी होगा बहुत सहज होगा, और सब लोग मिलके करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और जो जिसकी परिस्थिति है वहीं फिर सीधा चालू करना है, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है।
एक बार आपने बताया था ना कि एक बहन आई थी तो, और किसी पार्टी को लेकर, और वो बीड़ी पीता था शांतिवन में, और फिर बाहर उसको कहता है, उसको कहा था बीड़ी नहीं पीनी है, लेकिन फिर उसको बहन ने बोला नहीं आप बीड़ी चालू रखो, फिर सोचो मैं नारायण हूँ और मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो आपको कैसे चलेगा। धीरे 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 उसकी
किसी से भी कोई भी कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है, हमारे पास कितने ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, सब प्रकार के आते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता ये ब्रह्मा कुमारी से क्या है, वो तो जैसे नॉर्मल बात करते हैं, बताते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते रोज का, और ना ही हम किसी को कहते हैं कि नॉन वेज बंद करो या बीड़ी बंद करो। हाँ, उनको कहते हैं कि कितना लेते हो, वो कहते हैं 25 सिगरेट पीता हूँ। हम उसको कहते हैं उसको थोड़ा कम करो, अभी थोड़ा 20 कर दो, फिर देखेंगे आगे का। उसको बंद करने का कभी नहीं सलाह देते, बंद करेंगे तो उसकी वही रात को आ जाएगा एडमिट होने आईसीयू में, क्योंकि उसके शरीर की वो रिक्वायरमेंट है, उसके शरीर को आवश्यक है। उसी तरह जो व्यक्ति जो भी खा रहा है वो उसके शरीर की आवश्यकता बन गई, हमने उसे खाया ही नहीं तो हमें तो पता ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर इटालियन कोई डिश का नाम लूँ तो मन में कोई चेंजेस होंगे इमोशंस में? नहीं। पर यदि हम कहें कि आज आलू परोठा तो तुरंत उसका पिक्चर आ जाएगा। ये जिसने, अगर कोई विदेशी यहाँ बैठा है और उसको कहो कि आज तो वो क्या बनने वाला है, देसी बेला भात, तो वो कहेंगे उसको कुछ भी, उसकी चेतना में कोई रूपांतरण नहीं आए, वो आराम से बैठा रहेगा। तो ये जो जिससे बचपन से जो कुछ लिया है उसको ही चालू रखना है। अगर कोई कुक्ड ले रहा है तो कुक्ड चलने दो, और कोई रॉ ले रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि रॉ बंद कर दो और कुक्ड पे आ जाओ, उसको मुश्किल हो जाएगी। और ये अगर कोई कुक ले रहा है उसको कहो कि आज से कुक बंद, सीधा रॉ, बेचारा इतना दुखी हो गया, शुरुआत ही पहला दिन ही है कार्ड ट्रेनिंग का, इतना बड़ा शौक लग गया उसको, कहता है बस अब नहीं होगा मेरे से, पहले दिन ही उसको 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। अरे मैराथन दौड़ना है ना, तो पहला आधा किलोमीटर पहले दिन, फिर आधा किलोमीटर हो गया, फिर 1 किलोमीटर दौड़ना चालू करो, फिर 1 मास हो गया, फिर 5 किलोमीटर पहुंचो धीरे धीरे, फिर 10 किलोमीटर, फिर 20, और फिर एक दिन वो 21 किलोमीटर भाग जाता है आराम से। शरीर ट्रेन होता है धीरे धीरे, शरीर को की आदतों को समझना है। एकदम परिवर्तन कर दिया तो शरीर को शौक लगता है, कुछ भी हम खा रहे हैं वो शरीर के लिए नीट। कोई 10 कप चाय पीते सी जब तक नहीं पीते तब तक मज़ा ही नहीं आता है। अब चाय जैसी ही दूसरी चीज़ लानी है, एकदम बंद नहीं करना है, चाय जैसी गर्म होनी चाहिए, वही टाइप की वाली, मतलब मन को धोखा देना है बस। वही वाइट होनी चाहिए, वही कलर होना चाहिए, वही गरम गरम होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, वही होना चाहिए तो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा काम। इसलिए निकोटीन ये होते पैचेस होते हैं मेडिकल में, डी एडिक्शन में क्या दिया जाता है, निकोटीन पैचेस। वो जो सिगरेट और ये सबसे जो खुशी होती है अंदर तन बदन में सुख, वो लेने से भी वही होता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति उसको छोड़ता है और ये पकड़ लेता है। एक एडिक्शन से तो छूटना है पर दूसरा एडिक्शन पकड़ेगा, पर वो एडिक्शन फिर भी ठीक है चलेगा, वो उतने से खतरनाक नहीं है। विष से विकारों से जो सुख मिलता है वो धीरे धीरे मेडिटेशन से मिलने लगेगा ना, तो मेडिटेशन एक एडिक्शन बन जाएगा, पर फिर भी ठीक है, ये मेडिटेशन एडिक्शन बन जाएगा। चॉकलेट से जो सुख, चॉकलेट खाते हैं डार्क चॉकलेट्स लोग, उससे भी वही सुख मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, यूफोरिया की अनुभूति होती है। तो एटलीस्ट वो ड्रग्स जो लेते थे पहले LSD इधर डालते थे, वो ड्रग्स से चॉकलेट तो ठीक है, वहाँ भले चॉकलेट का आदि बन गया, पर अब फिर उसको फिर और ऐसे आगे चेंज करते जाना है, तो नए नए पैटर्न्स पर एक्सेप्ट करना है। पर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, जैसे एक व्यक्ति था जिसको भूत प्रेत जहाँ देखो वहाँ भूत प्रेत, इतना डर लगता था सो नहीं पाता था रात को, जहाँ देखता था भूत प्रेत, हाथ रखा तो उसको लगता था किसी ने रखा। एक तांत्रिक के पास पहुंचा, तांत्रिक ने कहा अच्छा ये बात है, चिंता मत करो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करता हूँ, ये लो ताबीज यहाँ लगा के रखो, जब तक ताबीज है कोई आ नहीं सकता। और ऐसा ही हो गया, ताबीज पहना और भय ही खत्म हो गया उसका। पर रात को सोता है एकदम उठता है, ताबीज तो है ना, है ताबीज खो तो नहीं गया, ताबीज किसी ने लिया तो नहीं, मेरा ताबीज कहाँ है? पहले भूत प्रेत का भय था, अब भय कौन सा है, ताबीज खोने का, रिप्लेसमेंट हो गया,
ताबीज ही भूत बन गया।
अभी दिन रात वही चिंता है उसको कि ये खो ना जाए, ये खो ना जाए, परंतु ये फिर भी ठीक है उससे। अब फिर इसको इससे निकलने के लिए कुछ और युक्ति करनी पड़ेगी। तो ये भी ऐसा ही है, फूड भी ऐसा ही है। अगर हमको नॉनवेज छुड़ा दिया, जो पहले नॉनवेज खाते थे ज्ञान में आने से पहले, और वो आने के बाद उनको कहा नॉनवेज आज से बंद, तो यहाँ क्या करना है ब्रह्मा कुमार, यहाँ केवल कच्चा, बेचारा इतना दुखी, दो दिन में ज्ञान छोड़ के वापस नॉनवेज पे चला जाएगा। ज्ञान बहुत अच्छा है बट वो नहीं छोड़ सकता। यू कैन चेंज मैन्स रिलीजन बट नॉट हिज डाइट। आप व्यक्ति का धर्म बदल सकते हो, उसका भोजन नहीं। बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है ये। व्यक्ति चेंज हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, सिख ईसाई, कुछ भी, पर भोजन नहीं बदलता है। नेक्स्ट।
तो ये यात्रा दुख की नहीं है, सुख की यात्रा,
आनंद की यात्रा,
पूरी मौज की यात्रा के साथ इसको कायम रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा को ये दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी?
बाबा को दुनिया बनाने की जरूरत इसलिए थी कि एंटरटेनमेंट। हाँ। ये लीला है, इट्स फॉर जॉय, इट्स फॉर प्ले, इट्स फॉर फन, आनंद के लिए।
आनंद के बाद क्या गति होती है?
आज कहा ना, ये शूटिंग हो चुकी है, शूट हो चुका है ये ड्रामा, ड्रामा की शूटिंग शूट हो गई है। सुबह की साकार मुरली, ये शूटिंग है। नहीं, उसको
बाबा खुद मुरली में ये कहते हैं कि सतयुग में भोग बल की नहीं लेकिन योग बल की सृष्टि होती है, वहाँ कोई विकार में नहीं जाते हैं लेकिन सृष्टि तो होगी ना, लक्ष्मी नारायण और देवी देवताओं की, तो बाबा फिर ये दोनों को बनाया क्यों? लक्ष्मी और नारायण में भी तो रूहानी प्यार होगा। मेरा क्वेश्चन अब ये है, रूहानी प्यार की भी क्या जरूरत है? वो रूहानी प्यार ही जिस्मानी प्यार में बदल गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी हमेशा के लिए मुक्ति में चले जाएं? झंझटी खत्म।
ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आज की साकार मुरली, वहां विष नहीं मिलेगा, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तो ये जो सृष्टि की संरचना की गई है, सबसे पहले तो ये समझना है ये क्या, क्यों और कैसे, ये सब प्रश्नों से इसे जाना नहीं जा सकता। ये जो सृष्टि है ये नाटक है, और भक्ति में इसे क्या कहा गया? लीला। भगवान ने इसे क्यों रचा? अपने आनंद के लिए। इससे तुम्हारे गिरने उठने का कोई लेना देना नहीं है। उसने क्यों रचा है इसे? उसके आनंद के लिए। ये प्रभु, वो अपने आनंद के लिए सृष्टि की उसने रचना की है। और ये जो चक्र है, अगर ये देवता है, ये क्षत्रिय, ये जो भी है, अगर कंटिन्यूस पाँच हजार वर्ष ही केवल देवता ही राज करे, ठीक है, सब सुख ही सुख सृष्टि में, ऐसी मूवी कौन देखने जाता है? सुपरहिट ऐसी मूवी होती है क्या जिसमें एक घर है, जिसमें माँ बाप है, बच्चे है, सब खुश है, अब ऑडियंस बैठी है देखते हुए, बीच में गीत हो रहे, पार्टी जा रहे, पिकनिक जा रहे, अरे कुछ तो हो, कुछ तो एंट्री हुई नहीं है किसी की मूवी, मतलब अभी भी खुश थे, बीच में भी खुश है, लास्ट में भी खुश, ऐसी मूवी डायरेक्ट फ्लॉप। हाँ, कहाँ उसमें खाली मेल ही मेल है, या खाली फीमेल ही फीमेल है, या मेल फीमेल दोनों है, पर दोनों ही खुश है। अरे ड्रामा की तो मूवी, तो रावण की एंट्री होती है तब कहीं, हाँ अब कुछ है, अब कुछ होने वाला है, सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम, अभी पता चला, अभी कुछ होगा, क्योंकि उसी का तो इंतजार रहता है। हम रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है, दो लोग लड़ना चालू करते हैं, हम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी रोक के देखते हैं दोनों को लड़ते हुए, अपनी साइकिल रोक के देखते हैं लोगों के बीच चल क्या रहा है, और जब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, एकदम दुख होता है। जितना उन दोनों में ये होता है उतना मजा आता है देखने के लिए, और जैसे दोस्ती हो जाती है टाइम वेस्ट। ये भी ऐसा ही है, खाली सुख का, ये अगर सब अच्छा होता तो इसमें मजा नहीं, दूसरा ये बनाया इसलिए, उसने अपने लिए बनाया, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है, ना कोई लेना देना है तुमको। और ये खुशी के लिए, मजे के लिए, मौज के लिए, आनंद के लिए लीला है, इसका आनंद लो बस। ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये 5000 साल की क्यों है, 6000 साल का क्यों नहीं है? 6000 साल का होता तो भी यही पूछते, 5000 100 वर्ष का क्यों नहीं है, तब भी वही प्रश्न होता है, ये ब्रह्मा के तन में ही क्यों आया?
क्या पता बाबा
रतन मनोरिंद्रा दादी से, मनोरिंद्रा दादी को पूछते हैं ब्रह्मा के, तो क्या तुम्हारे तन में आता क्या? प्रश्न तो है, इसलिए कहा है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये जिज्ञासा से निकल रहे हैं, वास्तविक प्रश्न है या बुद्धि की खुजलाहट या टाइम पास?
ओम शांति। आई एम लीडिंग वीकी लाइफ फॉर पास्ट 30 ईयर्स। आई हैव स्टॉप्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली, टेकिंग रॉ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ओनली इन द मॉर्निंग, टेकिंग होम मेड सोया मिल्क एवरी डे बिकॉज आलमंड्स एंड कोकोनट मिल्क डज नॉट सूट माई हेल्थ। वुड लाइक टू नो बेदर कंसप्शन ऑफ सोया मिल्क इज़ ऑल राइट। मोर ओवर ड्यू टू नो कंसप्शन ऑफ कर्ड वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। प्लीज सुजेस्ट सम अल्टरनेटिव फॉर प्रोबायोटिक्स।
सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है धरती, बेयरफुट वॉक, नंगे पांव चलना, सब अपने आप मिलेगा। एक दूसरा, जो व्यक्ति को जो सूट होता है उसी के साथ आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे समझते जाएंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसकी आवश्यकता है किसकी नहीं आवश्यकता है। ये सब मान्यताएं हैं, प्रोबायोटिक चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इससे पेट ठीक होगा, उससे पेट ठीक होगा, इससे ऐसा होगा, उससे ऐसा होगा। हमेशा जब प्रश्न आए लेवल 4 के साथ कंपेयर करो कि एक कैटेगरी ऐसी भी है लोगों की जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ ठीक चल रहा है उनका, उन्हीं के साथ कंपेयर करना है। जो कुछ होता है संपूर्ण निर्विकारी जो देवता है उनके साथ कंपेयर करना है। अच्छा हम थोड़ा सा तो कर लेते हैं, ये चलेगा क्या, इतना ये ऐसा टच कर लिया ये चलेगा क्या। कंपेयर करो ऊपर, जो भी प्रश्न आया कंपेयर कहाँ करना है, संपूर्ण निर्विकारी देवता। उसी तरह प्राणी की यात्रा में कैटेगरी 4 है, हाँ चौथी कैटेगरी लेवल 4। लेवल 4 की जो कैटेगरी है उसमें व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किसी चीज़ की, वो फ्री होता है। वो चाहे तो कैटेगरी 3 में आ सकता है, फिर ऊपर फिर कैटेगरी 4 में चला जाता है। ऐसे कई लोग थे जो कई साल तक ना खाना ना पीना, फिर जब उनको लगा कि थोड़ा लेना चाहिए वो लेते हैं, परंतु फिर फ्री हो जाते हैं, बनते नहीं है कहीं पर। उन्होंने सॉलिड की दुनिया भी देखी है, ड्रिंकिंग की दुनिया, खाने की दुनिया, ईटिंग वर्ल्ड, ड्रिंकिंग वर्ल्ड, नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग वर्ल्ड, तीनों जगत का आनंद लेते हैं। कभी इसमें रहते हैं, कभी इसमें आते हैं, कभी इसमें आते हैं, पर कहीं पर भी बनते नहीं है, इतना फ्रीडम। इस प्राणी की यात्रा का ये लक्ष्य है। तो ये भी जो प्रश्न है, वो मिल्क नहीं ठीक तो सोया मिल्क है, कितने सारे अलग अलग प्रकार के मिल्क है, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, आमंड मिल्क, काजू का मिल्क, बादाम का मिल्क, बार्ले मिल्क, राइस मिल्क, ओट मिल्क, अलग अलग प्रकार के मिल्क है, ये ले सकते हैं बना सकते हैं। रही बात प्रोबायोटिक की, तो सबसे पहला ये पूछो कि इसकी मुझे क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है, अपने आप से पूछो। बाकी मेडिकल की बातें कहो तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो हम पेशेंट्स के लिए लिखते रहते हैं, ये लो वो लो, ये कंपनी वो कंपनी, एक एक कंपनी दो दो कंपनी में इतना अंतर होता है कॉस्ट में। और प्रोबायोटिक बहुत कॉस्टली होते हैं, एक एक टैबलेट 50-50 रुपए की होती है, कहाँ तक लेगा वो, सस्टेनेबल नहीं हो पाती, 4 दिन लेगा 10 दिन लेगा फिर छोड़ देते हैं लोग। यहाँ पांडव भवन की माताओं की बातें या भाई बहनों की बातें, यहाँ आते हैं भाई बहने, दवाइयाँ ख़त्म हो जाती है, बंद, पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसे बचा के रखे जाने की टिकट के और बताते नहीं किसको, किसको बताएंगे, और मांगने का संस्कार नहीं है कि डिस्पेंसरी में जाए और मांगे कि हमको फ्री में दे दो, तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए सोया मिल्क इज गुड। हाँ सोया थोड़ा भारी है, हाई प्रोटीन है वो, पर सोया मिल्क अगर लेते तो वो ठीक है, ले सकते। एनीथिंग विच इज लिक्विड, जो कुछ लिक्विड है वो ठीक है, जो सॉलिड है वो गड़बड़ है, बस ये निष्कर्ष है। नेक्स्ट,
ये प्रश्न डायबिटीज से संबंधित है, तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी का इसमें समायोजन हो जाएगा। मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं इस बीमारी से बहुत तरह की क्लासेस व इलाज लेकर संघर्ष कर रही हूँ या रहा हूँ। मैंने एक डॉक्टर से भी अपना डायलिसिस करवाया था, 3 दिन एडमिट रहकर, और उन्हीं की दी हुई दवाई ली थी ग्लाइकोमेट। 4 साल पहले एक और डॉक्टर का डाइट प्लान भी फॉलो किया और तब से मैं वीगन डाइट पर ही चल रही हूँ। मोस्टली फ्रूट्स हरी पत्तियों का जूस लेती हूँ, एक टाइम खाना भी खाती हूँ, लेकिन मेरा शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हो पाता। 1 साल पहले एक और डॉक्टर के प्रोग्राम को भी ऑनलाइन किया, छोड़ा नहीं किसी को। लेकिन पूरा फॉलो नहीं कर पाए, उनके डाइट प्लान से थोड़ा कंट्रोल हुआ लेकिन बहुत डाइट कम हो गया था, वेट भी तब ही बहुत ज़्यादा घट गया। मेरे लिए लिक्विड डाइट पर चलना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि यदि मैं सिर्फ वेजिटेबल सूप या वेजिटल जूस पर रहती हूँ तब तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यदि फ्रूट जूस और फ्रूट स्मूदी विद नट्स के साथ जाती हूँ तो शुगर बहुत बढ़ जाता है। जैसे कल मैंने 2 वेजिटेबल जूस, 1 फ्रूट जूस और 1 फ्रूट स्मूदी ली तो आज मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर 193 था। अब प्रश्न ये है कि लिक्विड में मैं क्या चीज़ शामिल करूँ और क्या नहीं ताकि मेरा वेट भी कम ना हो और शुगर भी कंट्रोल रहे।
सबसे पहला तो फ्रूट और फ्रूट जूसेस
जो एनिमा भी यूज़ कर रही हूँ।
फ्रूट जूसेस से शुगर स्पाइक होता है, जैसे गन्ने का जूस पियो 4 ग्लास 5 ग्लास, थोड़ी देर में क्या होता है हल्का सा चक्कर जैसा होता है, पेट में कुछ तो होने लगता है, 2 घंटा तक रहता है, दैट इज़ नोन एज शुगर स्पाइक। इसलिए जो कैटेगरी 3 वाले हैं हायर स्टेजेस में फ्रूट और फ्रूट जूसेस को छोड़ देते हैं, वो चाय पर आते हैं। हायर स्टेज जो है ये उल्टा है थोड़ा, कैटेगरी 4 वाले जो होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, हर्बल टी, ग्रीन टी, हुंजा टी या फिर कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले तो झंझट नहीं है बनाने का, गर्म पानी और उसमें डाल दिया बस, सूप बनाना मतलब, और सूप भी लेते हैं तो डिहाइड्रेटेड सूप्स आते हैं रेडीमेड आजकल पाउडर वाले, गर्म पानी में खाली डालना होता है। अब यहाँ पे जब शुगर है, ये सारे इश्यूज है, और जो भी मरीज़ होता है वो किसी डॉक्टर को कभी छोड़ता नहीं है, और अलग अलग पैथीज, अलग अलग विधियाँ जो मिलता है उस पर झपट के उसको पूछता है, ये क्या करूँ, इसका मुझे बताओ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, और बहुत कुछ ट्राई कर चुके होते हैं ये सारे लोग। तो सबसे पहला तो जूसेस जो है लिक्विड्स में 4 कैटेगरीज है, पहला है पानी, टी, कोकोनट एकदम थिन, दूसरी कैटेगरी है जूसेस की। तो जूसेस में 3 प्रकार के जूस है, फ्रूट जूस उसको हटा दो शुगर स्पाइक्स होगी, दूसरे प्रकार के जूस है वेजिटेबल जूस वो ले सकते हैं, तीसरे प्रकार का जूस है ग्रीन जूस हरी पत्तियों का जूस, ये दोनों ही लिए जा सकते हैं, इतना स्पाइक नहीं होगा, ये सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है सूप की, अलग अलग प्रकार के सूप बना सकते हैं, ढेर सारे सूप है, अलग अलग विधियाँ है इसकी सूप बनाने की। अगर चाहते हैं कि वजन तेजी से ना घटे तो अनाज का प्रयोग करो सूप बनाने में, दाल भिगो के रखो और फिर उसको सूप में डाल दो, वजन नहीं घटेगा, और वो लेते समय ये भी नहीं चलेगा सूप कि इसमें क्या क्या है, सब मिक्स रहता है, पता ही नहीं चलता इसमें क्या है, और एडिक्शन नहीं होगा क्योंकि लिक्विड में है, एडिक्शन सॉलिड में है। अगर चावल है इतना खाया पुलाव, उसका एडिक्शन है, पर वही पुलाव अगर लिक्विड वाला है, मिक्सी में उसको घुमा दिया है तो फिर इतना एडिक्शन नहीं है उसका, या बनाओ ही ऐसे कि वो पतला बने और उसको बाद में ग्राइंड भी कर दो तो उसका उतना एडिक्शन नहीं है। हाँ, तो सूप अलग अलग प्रकार के सूप बना सकते हैं, और वेजिटेबल सूप्स इसमें आलू यूज़ किया जा सकता, क्या कुछ यूज़ किया जा सकता है, और वो सब देखते हुए उसमें ये डालो ही मत, मीठा कहीं पर भी नहीं है। और चौथा है स्मूदीज, स्मूदीज थोड़ा मीठी होती है तो उसको हटा दो। तो फोकस ऑन वेजिटेबल जूसेस 1, सेकेंड ग्रीन जूसेस एंड 3 ऑल सूप्स लिक्विड्स में। और अगर तृप्ति नहीं होती है एकदम थिन लेने से तो थिक करो उसको, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाया जा सकता है उसको, ताकि पेट को लगे कि हाँ भाई कुछ मिल रहा है, नहीं तो खाली पानी वाली चीजें लेते हैं तो दुखी होता है मन। तो जस्ट ट्राई ये अलग अलग, और योग के प्रयोग करो, वो तो है ही, वो करते रहना है। एक और ले लो कोई, एक छोटा कोई ताजा ताजा।
अभी तो नाइस भट्टी दवाई ले रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ, थकान खत्म।
वास्तव में ये भट्टी उन लोगों के लिए जिनको कोई बीमारियां नहीं है, ये सारे प्रश्न जो बीमारियों के हैं ना, ये इस भट्टी से कोई लेना देना नहीं है उनका।
इसका भट्टी का फायदा ले लेते हैं। 5 साल से मुरली पढ़ रहे थे पर उसकी गहराई और शब्द कभी समझ नहीं आए। लगभग सारी सीरीज अटेंड की यहाँ की भट्टियों की, और छोटे छोटे प्रयोग भी के, नहाना सोना खाना पीना एक्सरसाइज रनिंग अव्यक्त वाणियों का अध्ययन अमृत वेला पवित्रता यज्ञ इतिहास पढ़ना सन गेजिंग और प्राणिक फूड, सबसे अहम प्रकृति का सानिध्य जो पुरुषार्थ पहले था आज भी वही है, पर अब अनुभव और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है।
फूड चेंजेस योर कॉन्शियसनेस, फूड इज लिंक्ड विद कॉन्शियसनेस, फूड बदलते ही कॉन्शियसनेस बदल जाता है, सब जो दृष्टि वृत्ति सब 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 बदल जाएगा, क्योंकि हम जो कुछ है फूड इज क्रिएटिंग यू।
अब लगता है इन मुरलियों में कितना खजाना भरा है, शायद श्वास के बिना प्राण चल सके पर मुरली के बिना एक पल नहीं। तो
इसकी तीन अवस्था है। पहली एक अवस्था कि जब हम सोचते थे ये सारा जो है ना ये क्या है, ये सब ये तो मुरलियों में है ही नहीं कुछ, ये कहाँ से लाया सारा कुछ, और ये सारा लाया गया कहाँ से, नहीं सूक्ष्म बात है। एक है ये नई बात, ये है मुरली का जगत, ज्ञान का जगत, बाबा मम्मा दादी ये सब, यहाँ से इधर ये सब नया कहाँ से लाया, ये तो यहाँ है ही नहीं, ये लाया कहाँ से, भाई लाया गया कहाँ से, विदेशी भाई बहनों ने इन पर प्रयोग किए या भारतीय लोगों ने प्रयोग किए जो ज्ञान में नहीं है, जिनको ज्ञान के विषय में कुछ भी पता नहीं है, पर ये वो लोग हैं जो सतयुग की बातें करते हैं, ये वो लोग हैं जो संस्कार परिवर्तन की बातें करते हैं, शब्द हमारे जैसे नहीं है, और ये वो लोग हैं जो कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं आएंगे। इधर के ही किसी व्यक्ति ने इधर से इसको समझा और फिर धीरे धीरे ये जाना कि इन्होंने जो जाना तो वो पहले से ही मुरलियों में है, पर इस अवस्था में हम नहीं जान पा रहे थे, ये तो सब कुछ दिया हुआ है पहले से ही, एक एक मुरली में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। ये कैसा रहस्य है जो हम यहां से नहीं देख पा रहे थे, इनका अध्ययन किया तब पता चला कि ऐसा है, और फिर बाद में एक नई बात पता चली कि ये सारी चीजें इधर पहले से ही है, भगवान ने तो ये कब से कह रखी है, पकड़ नहीं पाए उसको, इसीलिए वो लिंक जो मिसिंग लिंक थी वो ये लिंक थी, और दुख का कारण ही संस्कार परिवर्तन। संस्कार क्या करो, संस्कार परिवर्तन और कैसे करो, संस्कार परिवर्तन की कड़ी है फूड। योग में पुरुष वो थोड़ा थोड़ा अनुभव तो सबका है, कैटेगरी टू तो सब अटेंड कर चुके, कैटेगरी टू कुमार जाते भट्टिया करते वगैरह एकदम अनुभव होता है अच्छा, दैट इज कैटेगरी टू, एक दिन रसाहार कर लिया कैटेगरी टू, पर वापस आ जाते हैं ना नीचे, सस्टेनेबल नहीं हो पाता है वो, सस्टेनेबल हो और कोई बीमारियों की वजह से करते हैं तब भी अनुभव योग अच्छा पड़ जाता है, पर सस्टेनेबल नहीं है, दीर्घकालीन नहीं चलता है, ये करके आते हैं नेचर की ओर में बहुत अच्छा होता है वापस नीचे उतरते हैं। ये यात्रा हमें सस्टेनेबल बनानी है, लंबा समय टिकने वाली बनानी है। पहले दूध लेते थे, दूध छोड़ दिया, दूध के नुकसान पता चले, अभी लिक्विड आ गए, वापस दूध में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ जो पहले से दूध ले रहे हम उनको ये नहीं कहेंगे कि छोड़ो चलने दो उसको, पर जो रॉ में कई समय से रॉ में चल रहे हम ये नहीं कहेंगे कि अब कुक्ड लिक्विड पे चले जाओ, रॉ लिक्विड पे ही आगे बढ़ो, जो जहां है उसको वहीं से आगे बढ़ना है, बस पीछे नहीं जाना है। हाँ अगर जाना है तो प्रयत्न करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या होता है, डरने की भी बात नहीं है,
दुखी होना तो करके देख लो,
हाँ वो भी करके देख लो, सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। तो नई पहचान बनानी है, एक नई पहचान, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर। ओम शांति।
अमृत की खान साधना में पीले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान।
नहीं नन्ही सी हो आशा नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। समंदर।
क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है।
नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम।
अभी नहीं तो कभी नहीं, हर क्षण की दरकार है, छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, हो संतान तुम।
एक उफान भर, एक उफान भर, आ, 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 आ।